आगे चलेंगे। अब अगला जो हिस्सा है इसमें हम देखेंगे कि सच्चा ईमान जब दिल में आता है तो वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। दुआ कीजिए कि हमारे दिल में ऐसा ही ईमान आ जाए। आयत 56, वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज्जब व अबा, और हमने इसको यानी फिरौन को दिखाई अपनी सारी निशानियाँ, लेकिन हुआ क्या, फकज्जब व अबा, इसने फिर भी झुटलाया और इनकार किया। बहुत ही अफसोस की बात है कि जब किसी को अल्लाह की निशानियाँ दिख भी जाएं, समझ भी आने लगें, फिर वो उससे मुंह फेर लें। लेकिन ये बदबख्ती की अलामत होती है। ये तो फिरौन था ना, लेकिन आज भी देखिए तो बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में अभी तक हिदायत का चिराग नहीं जला होता, उन पे तो अफसोस है, लेकिन वो लोग जिनको पता हो फिर वो उससे पीछे हों, तो उन पे तो फिर दिल की उदासी की बात कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जब हमें हिदायत की राहें दिखा दे तो फिर उस पर चलता ही रखे, क्योंकि ज़्यादा पकड़ भी उसी की है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो रास्ता भटक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो सकती है, सब है, लेकिन जब पता चल जाए कि ये रास्ता गलत है तो क्या उसको छोड़ना नहीं चाहिए? वो शख्स जिसको पता भी लग जाए कि मेरा रास्ता गलत है फिर उस पर चलता जाए तो उसको बेवकूफ़ी कहेंगे ना। इसी तरह जिसको पता कि मेरा तर्ज ज़िंदगी गलत है, मैं खुद अपने ही कामों की वजह से परेशान हूँ, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और जब किसी को कहते हैं कि अच्छा नहीं वो सही रास्ता है, तो फिर सही रास्ते को अपना लेना चाहिए ना। लेकिन लोग नहीं अपनाते, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम गलत चीज़ों पे भी कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। हर बंदा अपने माहौल का इतना आदि हो चुका होता है, वो कहता है अब चुप करके इसी पे चलते रहो। जिसको सफ़र करना है ना, सिर्फ सफ़र बराए सफ़र, वो कहेगा मैं तो सफ़र के लिए निकला था, मुझे लॉन्ग ड्राइव का शौक था, मैं तो करता रहूँगा। लेकिन जिसके सामने कोई मंजिल होगी, कोई मकसद होगा, वो तो एक सेकंड भी फिर गलत रास्ते पे और नहीं चलेगा, बल्कि सही रास्ता ढूंढेगा। अल्लाह ताला कहते हैं हमने दिखाई थी उसको निशानियाँ, हालांकि देखिए मूसा और हारून के नाते से दिखी थी, लेकिन अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ लेते हैं। तो इस अमल की बात यह कि आज जब हमें भी कोई निशानी दिखती है हिदायत की, तो ये अल्लाह की तरफ से होती है। सूरत ज़ुख़रफ़ आयत 48 और सूरत नमल आयत 14 में भी यही बात है कि जब लोगों को हिदायत नज़र आ जाती है लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको इख्तियार नहीं करते। काला अजीतना लितुख्रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा, खुद हिदायत से हटे और इल्ज़ाम मूसा पे लगा दिया बदगुमानी के साथ। क्या उसने कहा है मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने इस जादू के बल पर हमें हमारी सरजमीन से निकाल बाहर करो? देखिए अगर आप ऊपर की आयात में मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सामने रखें तो क्या मूसा की किसी बात से ये इशारा भी मिला था कि फिरौन गो भाग जाओ छोड़ दो? मूसा की दावत सरासर तौहीद की थी, फिरौन ने उसको सियासी रंग दिया। हर दौर में अहले हक की दावत लोगों को सियासी दावत लगती है। लोग सोचते हैं ये हमारे खिलाफ थ्रेट है, क्योंकि उनको पता है कि जब एक अल्लाह की बड़ाई होगी तो हमारे छोटे छोटे निज़ाम तो नहीं चलेंगे। उसको थ्रेट महसूस हुआ ना, तो मूसा ने ये कहा कि फिरौन महल से निकल जाओ, मैं तुम्हारे महल के बाहर बैठ जाऊंगा और तुम निकलो तो ये कर दूंगा वो कर, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके दिल में खुद ये ख्याल आया, सवाल पैदा होता है कि ये क्यों आया, तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए तकब्बुर की असल। मुतकब्बिर जो होता है ना, वो असल में हमें बहुत मजबूत दिखता है, अकड़ता जो है, गर्दन जो इतनी अकड़ी होती है, चलने के अंदाज से, बात करने से, हर चीज में बड़ा ही टपकती है। हम समझते हैं कि ये बहुत मजबूत इंसान है, हालांकि होता बिल्कुल इसका अपोजिट है, अंदर से वीक होता है, कमजोर होता है। मुतकब्बिर जिस चीज के सामने खड़ा नहीं हो पाता ना, वो हक है, क्योंकि वो खुद को हक बनाकर पेश करता है। लिहाजा जब उसके सामने कोई ऐसी बात आती है जिससे उसकी इमारत गिरती हो, तो वो इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। तो कहने लगा कि तुमने तो हमें जादू के जोर से निकालना है, और दूसरी बात है कि क्या जादू के जोर से हुकूमतें बदली जा सकती हैं? कब की बदल चुकी होती है हमारे अपने मुल्कों की, फिर तो जादू भी सारे चल पड़ते। कभी भी याद रखिए कि जादू के साथ वो काम जो अमूमन लोगों के जहन में ना कि ये हो जाता, छू मंतर, कुछ भी नहीं होता। खैर धमकी सुन लीजिए, फलन्नातियन्नक बिसिहरिम मिस्लिही, तो हम भी जरूर लाएंगे तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू। ये असल में अब अल्लाह इससे काम कराने लगा है। आज के सबक में हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह अपने दीन के काम फासिकों से भी ले लेता है। इसलिए कोई फख्र ना करे कि हम अल्लाह के दीन का कोई काम कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं। अभी देखेंगे हम यहाँ इन आयात में, अब देखेंगे कि फिरौन कैसे मूसा की मदद करने लगा है, हालांकि वो अपने ख्याल में मूसा के खिलाफ लोगों को जमा कर रहा था। कहने लगा हम भी जरूर ले आएंगे तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू, ठीक है। फजल बैनना व बैनक मुआइदा, तो मुअय्यन कर लो हमारे और अपने माबैन वादे का एक मुकर्रर वक्त, यानी अपॉइंट कर लो, डेट फिक्स कर लो। मुआइद का जो लफ्ज़ है ना, ये ज़र्फ़े ज़मान भी है और मकान भी है, यानी वादे की जगह और वादे का वक्त, कब करना है और किधर करना है। और इसी तरह मसदर मीमी भी है, यानी वादा करना, यानी आओ टॉस कर लो, एक मैच रखते हैं, तुम भी अपनी पार्टी लेकर और हम भी लेकर आते हैं। ला नुखलिफुहु नहनु, ना तो फिर हम उसकी मुखालफत करें, वला अंता और ना तुम, यानी जो वक्त हमारे और जगह सेटल हो जाएगी उससे हम दोनों ही इधर उधर ना हो। और वो जगह कैसी हो, मकानन सुबह, वो एक खुले मैदान मर हो। सुबह का जो लफ्ज़ है ना, सवा से है, सवा सबील भी हम पढ़ते हैं, जिसके दोनों तरफ बराबर हो। उर्दू में कहते हैं ना मसावात, मसावी का लफ्ज़ भी आता है। मुराद ये कि इसका एक मतलब यह कि हमवार मैदान हो, उसमें से टीले टिब्बे ना हो, स्पॉट सीधा, ताकि दूर से लोग देखें। और दूसरा कहते हैं इसका मानी सवा का इधर है बराबर, यानी हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर हो, फासला जो हम दोनों को सूट करता हो वो रखेंगे। फिरौन का ख्याल क्या था कि इस भरे बाजार में मूसा को रुसवा कर देते हैं ताकि लोग इससे दूर हो जाएं, और अल्लाह ने उससे वो काम ले लिया जो बेचारे मूसा के हाथ में नहीं था। देखिए मूसा के पास हक था, आप ऐसे सोचें, हक के नाम का एक नया प्रोडक्ट था उनके हाथ में, अभी वो उसको लॉन्च तो कर रहे थे लेकिन मार्केटिंग करने के पैसे नहीं थे। लोग अमूमन कोई नई चीज़ लाते हैं, पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्लायर छपवाते हैं, कंपनी से बात करते हैं, तो मूसा बेचारे तो कहाँ, 10 साल की खिदमत करके वापस आ रहे थे, उनके हाथ में तो कुछ था नहीं। पैगाम ये था कि घर घर पहुंचे मिस्र में, आगाज़ हुआ फिरौन से, क्यों हुआ, ताकि डूब जाए, नहीं, दो लफ्ज़ याद करें, क्या कहा था अल्लाह ताला ने, या तज़क्करा औ यख्शा। अगर फिरौन मूसा की दावत कबूल करता तो मिस्र के घर घर में जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हदीस में आता है कि अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पे होते हैं, बादशाह सीधे हो जाए तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाता है। तो लिहाजा फिरौन के पास भेजा, अब फिरौन ना माना। अब होना क्या था कि फिरौन अगर ना मानता तो मूसा की दावत को एक बहुत बड़ा हिट पड़ता, क्योंकि आप तो मूसा बेचारे फिरौन के साथ मुकाबला करते या फिर मिस्र के घर घर जाके कहते लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने ऐसा जरिया बना दिया कि फिरौन के दिल में डाल दिया कि मूसा का मुकाबला करवा लो अपने जादूगरों से, और उसके दिल में बदगुमानी आई और ये मूसा के लिए खुशगुमानी बन गई। कहा ठीक है, हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा काला मौईदुकुम यौमुज़्ज़ीना, ठीक है तुम्हारे वादे का वक्त जश्न का दिन होगा। ये जो यौमुज़्ज़ीना है, आप इसको ऐसे कह लें हॉलीडे, छुट्टी का दिन, कोई जश्न का दिन था, कहते हैं कोई त्यौहार था, इसी से बात लोगों ने यौम-उज़-ज़ीना की तफसीर में ये बातें लिखी हैं कि ये फिरौन की सालगिरह का दिन था और वो हर साल उसको बड़ी धूमधाम से मनाता था, तो इसी से वो निस्बत भी इस काम की फिरौन की तरफ ले जाते हैं। कोई भी ऐसा दिन होगा कि जिस दिन को जश्न होता था। मूसा अब घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि ठीक है। मूसा घबराए क्यों नहीं, इसलिए कि मूसा के पास हक था, तो हक को कोई आंच नहीं है। कहा भाई यौम-उज़-ज़ीना होगा, और दूसरी बात है वह यख़्शुरुन्नासु दुहन, ये कि लोग जमा कर लिए जाएं दिन चढ़े। दुहा का जो लफ्ज़ है ना, जब सूरज नया नया चढ़ा हो, चढ़ता सूरज कह लें, बिल्कुल सुबह का वक्त है, लाइक जिसको आप कह सकते हैं हमारे हिसाब से 9-10 बजे का वक्त है। सलातुल दुहा भी यही होती है, जिसको सलातुल चाश्त की नमाज भी कहते हैं। तो कहा दिन चढ़े पे, ये वही वक्त है अमूमन जिस वक्त हम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, सूरज निकल जाता है उसके वक्त, यानी जरा सी धूप उठ जाए फिर लोगों को जमा किया जाए। मूसा ने ये वक्त क्यों चूज किया, इसलिए कि इस वक्त एक तो लोग फ्रेश होते हैं, दूसरी बात है कि दिन बड़ा खुला होता है, फिर इसके बाद पूरा दिन होता है पीछे, अगर उसका कोई आफ्टर इफेक्ट दिखता तो मूसा वो भी देख सकते। और अमूमन देखिए आज भी मैचेस और इस तरह के मुकाबले जब होते हैं वो सुबह सुबह के वक्त में होते हैं, इंसान की एनर्जी भी होती है। मूसा ने कहा कि ये कर लेते हैं, फतवल्ला फिरौनु, तो फिरौन ने रुख फेर लिया। अब ये रुख फेरने से क्या मुराद है, अब देखिए लफ्जों के खुद देखेंगे ना, यहां मुराद वो नहीं है जो पीछे था कि कज़्ज़ब वाला, यानी कहा कि ठीक है इट्स फाइन, अब पलटा वापिस अपने लोगों की तरफ, मुराद जे के तैयारियां करने लगा। फजामा कैदहु सुम्मा अता, फिर इसने अपने सारे हथकंडे जमा कर लिए, फिर वो मुकाबले में आ गया, यानी लोगों को जमा किया। पीछे आप पढ़ चुके हैं, कहा कि लेके आओ माहिर जादूगरों को, पूरी तैयारी की, मुकाबले में लाया ताकि पता चले कि मूसा अलैहिस्सलाम झूठे हैं और ऐसी नबूवत उनका दावा झूठा है, तो चल पड़े। और लोगों को भी बुला लिया, सब आओ फ्री मैच देखो, नो टिकट, ओपन एयर, ठीक है, सब आ गए। अब क्या हुआ मूसा की बात, قال له موسى, मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको खबरदार करते हुए कहा, वैलकुम, तुम्हारी बदबख्ती, पीछे लफ्ज वैलम बहुत दफा कर चुके हैं, हलाकत, तबाही, बर्बादी, ला तफ्तरु अलल्लाहि कज़िबा, तुम अल्लाह पर झूठ मत खड़ो, वरना क्या होगा, फयुसहितकुम बिअज़ाब, वो तुम्हें गारत कर देगा किसी अजाब के जरिए। यहां देखिए अब मूसा का खूबसूरत मिजाज, मुकाबले पे जा रहे हैं, दोनों तरफ की टीमें तैयार हैं, मूसा को तो यकीन था ना कि मेरे पास हक है, खुश होते कि आज सबके बीच में फिरौन रुसवा होगा, लेकिन सबसे पहले तबलीग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जब खैबर की तरफ भेजा तो आपने बुलाया और कहा कि अली, वहां जाकर हमला करने से पहले लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना, अगर वो तुम्हारी दावत कबूल कर लें तो वापस आ जाना। हालांकि खैबर की जमीनें ऐसी थी जैसे आप कह सकते हैं कि सोने की पुड़िया, लेकिन कहा कि अगर वो मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं तो हमने उनकी ज़मीनें नहीं लेनी, वापस आ जाना। इसी तरह सहाबा कराम को जब अल्लाह के नबी किसी जगह भेजते थे लश्कर के तौर पर तो कहते थे कि रात को हमला ना करना, इंतज़ार करना, अगर सुबह के वक्त तुम्हें उस बस्ती में अजान की आवाज़ आए तो समझ जाना कि ये मुसलमानों की बस्ती है, तो पलट आना। ये है तबलीग, ये इस्लाम का मिजाज। अगर आज हम मुसलमानों को समझ आ जाए, हर मौका दावत का मौका बन जाएगा। दावा किसी जगह, आपको आपके बच्चों का कोई मैसेज आता है कि वे पेरेंट मीटिंग है, खुशी से जाएं, क्या सोचकर, मैं वहां जाके दावत दूंगी। आपको दुनिया में किसी मैदान में भी अल्लाह ले जाए, अपना द प्राइम गोल ये बनाइए कि मैंने इसको दावत देनी है, और सारी बातें उनकी कर करा सुन सुना के आ जाए, और दीन की बात कहनी अब छोड़ो, बुरा लगता है, एक लीफलेट दे देंगे, पता क्या चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो लिहाजा मैसेज दिया, दावत दी। लफ्ज जो है ना इफ्तरा, तो वही है जो फारा या इसका रूट है, गलती ना खाइएगा, ला तफ्तरु में फारा या तानी होती, फरिया बेसिकली चमड़े को सीने को कहते हैं, तो इफ्तरा है जैसे हम कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। ये जो लफ्ज है ना फयूस हिताकुम, इसका रूट क्या होगा, कभी लफ्ज से पहले आया, चलिए सूरत मायदा, अक्लिहिमु सुख्त, याद है सुख्त कहते हैं छिलके को ऊपर का, जैसे बादाम के ऊपर एक हल्का सा छिलका होता है, ठीक है, ऐसा जो अच्छी तरह से उखाड़ लिया गया हो, हराम के माल के लिए वहां लफ्ज आया था, यहां मतलब ये कि फयुसहितकुम बिअज़ाब, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तुम्हारी खाल खींच लूंगा, यानी खूब तुम्हारी शामत आएगी उस अजाब के जरिए अगर तुमने अल्लाह पर झूठ बोले। मुराद यह कि अभी भी बाज आ जाओ, मुकाबला ना करो, बात को मान जाओ, हुज्जत भी कायम कर रहे हैं कि देखो झूठी बातें छोड़ो, अल्लाह के मौजज़े के आगे तुम नहीं चल सकते। वक़्त ख़्वाब मन इफ्तरा, और यकीनन वो नामुराद हुआ जिस किसी ने भी अल्लाह पर झूठ बांधा। तो ये मूसा की सिंसेरिटी थी, क्योंकि दीन व नसीहा, सच्चा मोमिन दूसरों का खैर ख्वाह होता है, वो उनको ख़त्म नहीं करना चाहता बल्कि उनके अंदर से कुफर ख़त्म करता है। खैर मूसा की ये बात थी बड़ी वजन वाली, लिहाजा फतनाज़ऊ अमरहुम बैनहुम, तो वो बाहम झगड़ पड़े, वसरुन नजवा, और अपने इस मामले में लगे चुपके चुपके मशवरा करने। आप इससे समझ लीजिए कि मूसा के इस हक का इतना असर हुआ कि फिरौन की पार्टी में फूट पड़ गई, उसके कुछ दरबारी कहने लगे ना ना भाई हम विदड्रॉ करते हैं, हम वॉक ओवर कर रहे हैं, हम नहीं इसका मुकाबला करेंगे, कोई कह रहा मुकाबला करो, कोई कहता ना करो, और चुपके चुपके मीटिंगें करने लग जाए कि क्या हो क्या ना हो। और याद रखिए जब हक पेश किया जाता है ना तो मुखालिफ गिरोह का चाहे एक आधा ही बंदा क्यों ना हो उसको बात समझ आ जाती है। मरूब हो गए मूसा से, नबूवत का रोब भी था, फिर आपकी शख्सियत थी, वजाहत थी, अल्लाह ताला ने पीछे भी बता दिया वल्कई तो अलही का मोहब्बत मिन्नी, ऑन दी होल मूसा अलैहिस्सलाम से लोग प्यार करते थे। और इसी तरह आप एक और जगह कुरान पाक में पढ़ेंगे कि मूसा कौन थे, कान इंदल्लाही वजीहा, तो कहते हैं कि हजरत मूसा के अंदर एक अजीब सी कशिश थी, अट्रैक्शन थी उनकी पर्सनैलिटी में, तो जो ही वो सामने आए लोगों को फिरौन जरा दबावा लगा और मूसा अलैहिस्सलाम की बात बड़ी अच्छी लगी। अब ये सारी बातें होने लगी तो फिरौन के तो पाँव हिल गए कि ये तो मेरे ही पार्टी के लोग मेरे खिलाफ होने लगे हैं। तो फौरन बोला, قالوا ان هذان لساحران يريدان, पूरी तस्नीह की गर्दान भरी पड़ी है। उन्होंने कहा ये दोनों जादूगर ही हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल दें। कैसे? बिसहरिहिमा, अपने जादू से। अय युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसहरिहिमा, अपने जादू के जोर से तुमको निकाल दें। और वयज़हबा बितरीकतिकुमुल मुस्ला, और तुम्हारी मिसाली तहजीब को बर्बाद कर दें। ये है अंदर का फियर, खौफ। फिरौन ने अपने लोगों के अंदर जब थोड़ी सी ऊंच नीच देखी तो अब बात को संभालने लगा, कहने लगा क्या हो गया तुम्हें, ये तुम दो जादूगरों की बातों में आ रहे हो, ये तो बहुत बुरे बुरे अजायम रखते हैं। पहली बात तो ये कि जादू के जरिए से तुम्हें तुम्हारे इस मुल्क से निकाल लेंगे। चले वो तो चलो जहां से निकाल देंगे निकाल देंगे, ये तुम्हारे मिसाली तरीके को छुड़वा देंगे। ये कौन सा था भी तरीका तुमुल मुस्लिम, ये है वो लफ्ज जिस पे आज भी इजिप्शियंस फख्र करते हैं, फिरौनी तरीके। हाईलाइट कीजिए, हर दौर के बातिल परस्तों को अपना तौर तरीका मिसाली लगता है, जिसको आज के लफ्जों में सिर्फ समझने के लिए कह लीजिए वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग। हमारा सोशल सेटअप, हमारी राइट्स की बात, हम जो बच्चों को राइट देते हैं, औरतों को राइट देते हैं, तो मूसा तो आकर तुम्हारे ये सारे मामले खत्म कर देगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये जो लफ्ज है ना तरीकतिकुमुल मुस्ला, तो मुस्ला असल में मुअन्नस है, अमसल की सबसे ज्यादा मिसाली तरीका। हक के मुकाबले में बातिल ज़हनियत का हमें खुला सबूत दिखता है। कहने लगा मूसा की ये सोची समझी तरकीब है और ये तुम्हें बंटवाना चाहता है। और आज भी आप देख लीजिए कि मुसलमानों से जो खौफ है ना दूसरों को, वो यही है। कभी आपने सोचा, कल की तो सरगर्मियां छोड़ी है ना जो मूसा के सामने फिरौन की थी, आज पूरी दुनिया में किस बात पे शोर है? मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्टिक, इस्लाम इज फंडामेंटलिज्म, और ये एक्सट्रीमिस्ट है, और ये बुनियाद परस्त है, एक्सट्रीमिस्ट है। क्या वजह है? उनको गम क्या है कि जिस दिन इस्लाम की असल चीजें सामने आ गई, ये हमारे सारे हवा के गुब्बारे जो है वो उड़ जाएंगे। आप देखिए कि एक छोटे से एक गज के टुकड़े से लोग क्यों डरते हैं, एक गज का टुकड़ा भी नहीं होता जिसकी वजह से किसी को क्या लगे वो सर पे डाले या उससे आधा मुंह भी छुपा ले, आप उसको निकाब कह दें, किसी को क्या लगे? डॉक्टर्स निकाब पहनते हैं ऑपरेशन करते वक्त, कोई बुरा नहीं मानता। सड़कों पे रोड वर्क करते हुए लोगों ने मुंह में निकाब डाले होते हैं, कोई बुरा नहीं कहता। जरासीम फैल जाते हैं, लोग उधर रेस्क्यू के लिए जाते हैं, किसी को क्या परवाह, आंखें खुली होती हैं। एक औरत अगर छोटा सा मुंह छुपा लेती है अपना तो उससे क्या मसला है? ये खौफ है कि यस हवा भी तरीकतिकुमुल मुस्लिम, आज भी यही खौफ है कि लोग चाहते हैं कि इस्लाम का निज़ाम जब आम होगा तो ये हमारी मनमानियां नहीं चलेंगी। और इसमें आप देखिए इंसानी हकूक की बातें कर दी और मर्दो जन की मसावत और औरतों की आज़ादी की जंग, और मुसलमान औरत को कॉम्प्लेक्स में डाल दिया कि शायद तुम ही बेकार हो और बाकी सारे ऐसे हैं। तो ये खौफ हर दौर में रहता है, वो चाहते हैं कि ऐसा ना करें। और मजे की बात देखिए कि वो जो सोच रहा था नुकसान होगा मूसा का, फायदा हो गया मूसा का। बिल्कुल आज भी जितना इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा है उतना इस्लाम फैल रहा है, जितना आप हिजाब के खिलाफ सुनते हैं उतना हिजाब आम हो रहा है, जितना निकाब का खिलाफ है। मेरी बात लिख लें, जिंदगी रही ना रही हमारी आपकी किसी की, आज के दौर में निकाब इशू है ना। आज से सिर्फ 5 साल आगे वाला वक्त जाके देखिए, लड़की निकाब पहन रही होगी मुसलमानों की, वेस्ट में जो भी हैं, पाकिस्तानी और मुसलमानों के मुल्कों की बात नहीं मैं कर रही, वो उतारते हैं तभी तो हमें मिलते हैं। लेकिन वेस्ट के लोग जिंदा हो रहे हैं, जाग रहे हैं। जितनी तेजी से यहां इस्लाम को डिमोलिश करने की कोशिश है, मैं तो कहती हूं अगर ये ओवरनाइट हो जाए, अगर पूरे मुसलमानों पे कोई एक लीडर ऐसा आके एक मूवमेंट चलाए कि आज से कोई औरत बगैर निकाब के बाहर नहीं आएगी, क्या आप ख्याल करते हैं कि इतनी जो हमारी लाखों की आबादी है इन मुल्कों में, क्या ये उस पर हमारे खिलाफ बात कर सकते हैं? एक वो वक्त आज से 10 से 15 साल पहले हिजाब बड़ा इशू था, वो औरतों ने उस दौर में स्टैंड लिया, आज लोग हिजाब चाहे फैशन से पहने, शौक से पहने, हिजाब समझ के पहने, पहन रहे हैं ना। एक वक्त आएगा कि लोग ऐसे ही निकाब पहनेंगे। अगला दौर दाढ़ी और निकाब का, 5-10 साल की खेल है। आपकी बच्चियां, आपकी पोतियां, नवासियां जरूर पहनेंगी, ये बात आप लिख के रख लें। क्योंकि कहता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर जो भी है उसके बाद। तो जरूरत है इस बात की कि हम जाके अपना हिस्सा डाल जाएं। असल तो कहते हैं ना ऑपोजिट द विंड, ये काम कर जाएंगे ना। और यही मुश्किल लगता है जब सारे करें तो फिर क्या खेल है। तो इबलीस को यही खतरा था कि मेरा तर्ज जिंदगी खत्म हो जाएगा, फिर मेरा निजाम नहीं चलेगा। आज भी हर तरफ तागूत को यही मसला है, इस्लाम आ गया तुम्हारी इंटरेस्ट बेस्ड चीजें खत्म हो जाएंगी, इस्लाम आ गया तो हमारी फहाशी के काम नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे खिलाफ है। खैर, अब उसने चुप करा दिया दरबारियों को कि चुप कर जाओ, ठीक है। फौज में हूँ कई तक हूँ, बस तुम मुजतमे करो अपनी सारी तदबीरें और अपने वसाइल और जराए फिर ले आओ मुकाबले में सफ बांध कर। यहां से देखिए कि था डिसिप्लिन्ड, था फिरौन, लेकिन उस दौर में भी सफ बंदी की बात थी, लाइनें बना के आओ। कोई कौम दुनिया में अगर तरक्की करती है ना, कुफर एक अपनी जगह पे, जुल्म अपनी जगह पे, लेकिन याद रखिए डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ये कामयाब कौमों का तुर्रा इम्तियाज होता है। हालांकि मुकाबला कराने जा रहा है लेकिन कह रहा है देखो ऐसे भगदड़ ना मचा करो। कई दकुम से यहां मुराद क्या है कि अपने सारे वसाइल लेकर आओ और ये सारी चीजों को करना शुरू कर दो। वक़द अफलहल यौम मन इस्तअला, आज वही कामयाब रहेगा जो खाली पाएगा। यानी आज का दिन एक फैसला कुन दिन है, मूसा है बड़ा या उसकी बात सच्ची है या हमारी सच्ची है, ठीक है। खैर, अब देखिए मुकाबला शुरू होता है। कालू या मूसा, ए मूसा, कहने लगे ए मूसा, कौन कह रहे हैं? कालू जमा जादूगर कह रहे हैं। कितने थे? बाज कहते हैं 70 थे, बाज कहते हैं 70,000 भी थे, ठीक है। मूसा की ये जो दावत थी ना शुरू की, कहते हैं कि दिल में दराड़ें तो इसी से पड़ गई थी उनके भी, लेकिन खैर अब आए हुए थे, पेट भरकर थे, आते ही इन्होंने पैसे भी मांगे थे फिरौन से, पीछे हम पड़ चुके हैं। लेकिन प्रोटोकॉल बहुत देती हैं ऐसी मॉडर्न कौमें, लेडीज फर्स्ट और वुमेन फर्स्ट, आप प्लीज, यस सर, और चाहे अंदर से किसी की रगें काट रहे हो। तो मूसा से प्रोटोकॉल दिया है, मूसा या मूसा इमान तुलकिया, क्या आप पहल करते हैं? यानी टॉस हम जीते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो हम आप टर्न देते हैं, ये मुराद है। वही मन नकू नवला मन अलका, या फिर पहले हम ही डालने वाले बनते हैं। यानी पहल कौन करता है दोनों में से? ये जो इम्मा का लफ्ज है ना, तखीर के लिए, चूज करना, इफ यू वॉन्ट यू कैन डू इट और अदरवाइज वी कैन डू इट, ये मुराद है। सूरह शुरा में भी हम पढ़ेंगे। खैर, मूसा का कॉन्फिडेंस देखिए आए 66 में, काल अबल अलकू, मूसा ने कहा तुम ही डाल लो, तुम पहल करो। ये कौन कहता है? जिसको यकीन होता है कि मैं जो काम करूंगा वो पहले करूं या बाद में करूं, ठीक हो। हमारे यहाँ एक बहुत ही कल्चरल बात है वैसे, कहते हैं किसी की झगड़ा हो रहा ना, पता चल जाए कि दो लोगों का झगड़ा है और तीसरा बंदा बीच में सुलह कराने या उस मामले को पैचअप करा रहा है, तो क्या कहते हैं? पहले मैं सुना दूं? नहीं नहीं ये पहले उधर से जाकर सुन लेगा ना, फिर ये मेरे खिलाफ हो जाएगा। नहीं, बल अलको, पहले सुन लो मेरी बात या बाद में सुन लो, मेरी बात जब सुनोगे इंशाल्लाह तुम्हारा जहन खुल जाएगा। ये कॉन्फिडेंस है, दावत दी। खैर, अब क्या हुआ? जादूगरों ने पहल की। फइज़ा हिबालुहुम, तो अचानक उनकी रस्सियां, हिबाल हबलुन की जमा, कहां पड़ा? वा तसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, जी वही लफ्ज है, ये भी हबल कहते हैं रस्सी को। बहुत सारी रस्सियां लेकर आए हुए थे और उनको जमीन में डाल दिया, ठीक है। और वह इसी युहुम, और उनकी लाठियां, इसी युहुम जो है ना ये असा की जमा है, ये जो पीछे मूसा का भी ऐसा था, लंबी लाठी को कहते हैं। रस्सियां भी ले आए थे, लाठियां भी ले आए थे, और क्या किया? उसको जमीन पर डाला। मिन सिहरिहिम अन्नहा तसअ, इनके जादू के असर से वो ऐसे नजर आने लगी गोया कि वो दौड़ रही हैं। यदि मैदान में रस्सियां और लाठियां फेंकी और जादू लोगों की आंखों पर किया। आज भी आपको बताया कि इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप अभी भी अपनी आंखों यूं करें ना, बचपन में हम भी करते होते थे, या यूं करते हैं ना तो दो दो दिखते हैं। तो रियली ये जादू है, इसको नजरबंदी का जादू कहते हैं। नजर बंद कर देते हैं, चीज सामने होती है दिखती नहीं है, या नहीं होती तो दिखने लगती है। और ये कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, ये इंसान के साथ है। इसके लिए एक इंग्लिश का लफ्ज है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बस तस्वीरें भी ऐसी होती हैं जी, शाबाश, इल्यूजन, यानी है कुछ दिखता कुछ है। जैसे आप दूर से धूप में देखते हैं तो आपको पानी दिखता है ना, जो सराब होता है, मिराज होता है, बिल्कुल इसी तरह की एक चीज होती है जो लोगों को वो कर देते हैं। तो लोगों को लगा कि ये रस्सियां दौड़ रही हैं। फौज सफी नफ्स ही खीफत मूसा, तो मूसा ने भी अपने जी में कुछ डर महसूस किया। ये क्यों भाई? इसलिए कि मूसा भी इंसान थे। इंसानियत और बशरियत साथ साथ दिख रही है। खीफा मस्तर है, यानी थोड़ा सा डर, खफीफ सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और औजसा का रूट क्या होगा भाई? वाव जीम सीन, वजसा, हल्की आवाज को कहते हैं। खौफ के लिए ये लफ्ज भी आ चुका है। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में थोड़ा सा खौफ महसूस किया। कुल नला तखफिन्नक अंतलाला, हमने फरमाया डरो नहीं, यकीनन तुम ही खालिब रहोगे। मैदान जंग हो या कोई और मैदान हो, अल्लाह की तरफ से तसल्लियां और खुशखबरियां आती हैं अपने रास्ते में निकलने वालों को। खौफ क्या था मूसा का? कि अगर ये मेरा मौजजा इनके जादू के आगे हार गया तो मेरा तो ये मिशन ही नाकाम हो जाएगा। शिकस्त हो गई तो समझे कि मुझे जो काम अल्लाह ने दिया उसका क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नला तखफिन्नक अंतलाला, तुम ना डरो, यकीनन तुम ही गालिब हो। क्या आपको इस आयत को पढ़कर सूरत आल इमरान की आयत याद आई? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। उम्मत मुस्लिमों को अल्लाह ताला ने कहा था तुम ही बुलंद हो, शर्त यह कि तुम ईमान पे हो। हर दौर के मुसलमान की कामयाबी की शर्त ईमान। तुम ऊपर रहो, तुम लोगों का डर छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। खैर, वल की माफी यमीनिक, अब जरा फेंको इस असा को जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। क्या होगा? तलकफ मा सनाओ, ये निकल जाएगा इन सब को जो कुछ उन्होंने बनाया। लकफा कहते हैं लुकमा बनाने को, जैसे रोटी तोड़ते हैं फिर उसको गोल बना के डालते हैं ना, यानी वो एक लुकमे की तरह सारी लाठियां उनकी खा गया। मूसा का अज़दहा, इन नमासनों कई दूसरा आखिर, जो कुछ उन्होंने बनाया था वो तो बस एक फरेब है जादू का। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर डाला वो एक असली सांप की शक्ल में बना, वो जादू नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से था। सारी लाठियां और रस्सियां वो खा गया। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हुआ करते जहां कहीं से भी आए। ये अल्लाह का फैसला है। इस्लाम का मिजाज जादू के लिए क्या है? यह आयत उसको नोट कर लें। एक लफ्ज है वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। इस पर बहुत सारी अहदीस भी मिल जाती हैं कि जादूगर का वाजिबुल कत्ल है। जिस मुल्क में इस्लामी निज़ाम आएगा फिर वहाँ ये जंतर मंतर आले और आमिल नजूमी और आपकी किस्मत आपके हाथ में और महबूब आपके कदमों में और ये सब कुछ नहीं चलेगा। मुसलमान हुकूमत उसको जाके वॉर्न करेगी, अगर वो अपना दुकान धंधा बंद नहीं करता उसको कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि जादू करने वाले लोगों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाते हैं। जादू करके अगर कोई फ़ायदा भी लिया जाए तो वो फ़ायदा भी फलाह का जरिया नहीं होता। आज तक ना तो आपने कभी जादू से लोगों के घर बसते देखे होंगे, और ना बे औलादों को औलाद मिलती देखी होगी, और ना बेटियां और बेटों के रिश्ते होते देखे होंगे। जादू कुछ भी नहीं है, पीछे हम सूरह बकरा में डिटेल से बात कर चुके, लेकिन यहाँ वही बात दोहराई जा रही है कि जादू के खौफ में पढ़कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। इब्ने अबी हातिम में और तिर्मिज़ी में भी रिवायत है कि जादूगर को जहाँ पकड़ो मार डालो। फिर आपने इसी आयत की तिलावत भी फरमाई कि ये अल्लाह का हुक्म भी है, और मुसलमान हुकूमत में ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ जादूगर रहें। खैर, जादूगरों के दिल पे क्या गुजरा? उल्किया सहरतु सुज्जदा। अब लफ्ज़ उल्किया की खूबसूरती अगर आप देखें ना, एक है कि सजदे में गिरे, ये क्या है? गिराए गए, बस गिरा दिए गए जादूगर सजदे में। किसने गिराया? अंदर की पहचान ने। जब इंसान को रब की मार्फत मिल जाती है तो वो फिर उसके बाद किसी और के आगे नहीं खड़ा हो सकता। सहरा तो जो है ना, यह साहिर की जमा, जादूगर यानी जमा के साथ आ रहा है। सर तस्लीम खम कर दिया, अब ना फिरौन की धमकियां और ना उसके लालच और ना दरबारियों की दोस्तियां कुछ उनको रोक ना सका, और अंदर से ईमान आ गया। قالوا آمنا برب هارون وموسى, वो पुकार उठे हम ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पे। आगे आप पढ़ेंगे यही जुमला फिरौन भी बोलेगा, मगर कब? बड़ी देर की मेहरबान आते आते, डूबते हुए ईमान गरगरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं। और ये किस वक्त ईमान ला रहे हैं? जब सर पे तागूत खड़ा है। ये हैं वो लोग जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत खुशखबरी हैं कि ये जादूगर कौन थे? सुबह के वक्त काफिर, जादूगर लालची, पैसे के लिए आए थे ना, शाम को पाकबाज मोमिन और अल्लाह के रास्ते के शहीद थे। ये है सच्चा ईमान। कहते हैं कि इनको अल्लाह ने जन्नत दिखा दी थी, इन्होंने अपनी मंजिलें अपनी आंखों से देख ली थी जन्नत की, अल्लाह ताला ने इनको हक दिखाया। जब हक के रास्ते में कोई तासुब नहीं होता ना, तो इसी तरह से होता है, फिर इंसान चल पड़ता है और उसको मान जाता है। आज भी आप देखिए कि जो आलिम होता है ना किसी फील्ड का, वो उसकी असल जानता है। किसी डॉक्टर की रिसर्च को अगर आपने चेक कराना है ना, तो उससे बड़े डॉक्टर को दिखा दें, वो मान जाएगा इसने ठीक इलाज किया, ठीक दवा दी है कि नहीं। इसी तरह चूंकि वो खुद जादूगर थे, तो उनको पता था कि मूसा का ये मौजा जादू नहीं हो सकता, तो उनका दिल उस हक के आगे झुक गया। बात तो फिरौन को भी समझ आ गई थी, लेकिन वो क्यों नहीं माना? क्योंकि उसके रास्ते के अंदर रुकावटें थी। قال آمنتم له قبل ان اذن لكم, फिरौन ने कहा तो क्या तुम इस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। ये है असल में अंदर बड़ाई का गुमान। हर दौर के तागूत को यही कुछ फहमी होती है कि लोग हमसे पूछ कर ईमान लाए। कहने को रिलीजियस आजादी, मजहबी आजादी, रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन असल में कहते हैं हमारी मर्जी से दीन चलो, शाही अंदाज में डांटा, तुम्हारी ये जरूरत? मेरी मौजूदगी में तुम मूसा के रब पर ईमान ला रहे हो? इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर, ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। देखिए अभी क्या कह रहा है कि तुम मेरे बंदे हो, और अब कह रहे हैं ये तुम अंदर से सब एक हो। ये भी एक तागूती निज़ाम की पैदावार है, अपने ही साथियों पे ईमान नहीं होता, यकीन नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि दीन की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, अपनी ज़ात की कोई कसम ना खा सके, लेकिन अपने साथियों के ईमान की कसम बंदा दूर बैठ के भी खा सकता है। कमी होगी, बेशी होगी, सुस्ती होगी, बेईमान नहीं है कोई। ये मान दीन की बुनियाद पे आता है। और जहां दुनिया होगी ना, कारोबारी लोग देख लें, जरा जरा बात पे बदगुमान हो जाते हैं, ये तुम अंदर से किसी से मिली हो कुछ है। शौहर देख लीजिए, जब ईमान नहीं होता अपनी बीवियों पे शक करते हैं, नहीं तुम अभी भी किसी और को याद करती हो, तुम किसी को करती हो, वो करती हो। तो जिसको अपनी दावत पे यकीन होता है कि जो मेरे साथी मेरे साथ हैं वो सच पे, वो कभी भी उन पे बदगुमान नहीं हो सकता। उनको समझाना, बात करना और बात है, लेकिन कभी उनके बारे में बदगुमानी नहीं। लेकिन फिरौन देख लीजिए कि ये बदगुमान है। फलौ कत्तियन्ना अयदियकुम वअर्जुलकुम मिन खिलाफ, तो मैं तो तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा। वलौसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइ नखली, और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली देकर लटका दूंगा। जुज़ू जिज़ उनकी जमा, खजूर का तन, नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को। और उसल्ली बनना सलबा से, फिरौन ने सबसे पहले सूली पे चढ़ाने का रिवाज डाला था। फिरौन किस तरह सूली पे चढ़ाता था? ये खजूर के दरख्त पे सूली कैसे है? क्या उस पर लटका देता था? नहीं, दरख्तों के साथ इस तरह लोगों को लटकाता था कि उनके हाथ और पाँव में कील काट देता था। और एक पाँव सीधा काटा है ना तो उल्टा बाजू काटेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों चीज़ें हाथ और पाँव एक ही तरफ का कट जाए तो इंसान अमूमन सर्वाइव नहीं करता। तो वो अजियत देना चाहता था, टॉर्चर सेल, तकलीफें दे दे के मारना चाहता था। कहा वाला ताला मुन्नायुना शद्दु अजाम्बम वबका, यकीनन तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा हम में से कौन ज्यादा सख्त सजा देने वाला है और कौन ज्यादा बाकी रहने वाला है। ये देखिए धमकियां, थ्रेटनिंग, लग पता जाएगा तुमने किससे टक्कर ली है। ये अंदाज है कि तुम अपने आप को ये समझते हो कि तुमने फिरौन से टक्कर ली है, तो फिरौन कोई छोटी हस्ती नहीं है, ये तुम्हें सिखा देगा, मजा चखा देगा, जिसको आप आज भी ये कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये धमकियां इतनी बड़ी बड़ी सुनकर उनका जवाब क्या होगा? ओ अच्छा, सॉरी, हम जज्बाती हो गए थे, माफ कर दो। नहीं, आलू लन नो सिरा का आला मा जाना मिनल बैशीनाद, अब हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं देंगे, मुकद्दम नहीं ठहराएंगे, ईसार नहीं करेंगे तुम्हारा, जबकि हमारे पास आ गई मिनल बैजीनाती रोशन दलील है। वल्लज़ी फ़तरनी, और उस ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया है, हमारा ईमान अब उस पर हो गया। कितनी जरूरत मिल गई इनको कि हम नहीं मानेंगे अब तुम्हारी बात। फ़क़्द ईमान तक़ाद, जो करना कर ले, तेरी मर्जी, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, हमें हक के लिए कुर्बान कर दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? इन्नमा तक्ती हाज़िहिल हयातद दुनिया, तुम तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी का ही फैसला कर सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इन्ना मन्ना भी रब्बीना, हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं। देखिए जरा लफ्ज इन्ना शब्द है इसमें, फिर आ मन्ना में शब्द है, फिर बी रब्बी ना में शब्द है, तीन शिद्दतें जमा हो गई हैं श्योरली। और माजी का सीखा है, ये नहीं कह रहे कि यूमिनु बिल्ला, ये नया नया अभी का ईमान नहीं है, बहुत ईमान दिल में रासिख हो चुका है, गोया के ईमान दिल में पुराना हो चुका है। और उम्मीद कह ली यग़फ़िर लना ख़तायाना, ताकि वो हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दें, कौन सी, कुफर की, जादू की, लालच की, और जो इसके अलावा हमने किया। वमा करहतना, और वो भी अल्लाह माफ़ कर दे जो तूने हमें मजबूर किया। यहाँ से नोट कीजिए, ये मुफस्सरीन के बीच में एक बड़ा अहम नुक्ता है कि किसी को मजबूर करके अगर कोई गुनाह कराया जाए तो क्या उसका गुनाह होता है? बिल्कुल होता है। ये अलग बात है कि इंसान की मजबूरी और उसकी शिद्दत को देखकर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। पीछे हम सूरह नहल में बात कर चुके हैं, मनुक्रिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नु बिल ईमान, तो कहा ये जो तुम मजबूर करते हो, और इस लफ्ज़ से पता चलता है कि फिरौन मजबूर करके उनसे जादू करवाता था। अलैहि मिनस सहरी, जादू में से, यानी जो काम हमने अपने इरादे से किए या जो बगैर इरादे के तेरे प्रेशर में आके किए, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। आप देखिए आयत 62 में हम देख चुके हैं कि मूसा की जो शुरू की स्पीच थी उसके बाद ही थोड़ा सा गड़बड़ मामला शुरू हो गया था, वो हल्की सी एक दरार थी, लेकिन मौजज़ा देखकर तो बस फिर वो बोल उठे। यही दो तीन रास्ते होते हैं इस्लाम आने के और ईमान आने के, कुछ लोग फौरन पिघल जाते हैं, कुछ इंतज़ार में रहते हैं। जब लोहा नरम देखो तो बस पिघल जाओ। आप देखिए कभी मोमबत्ती पिघले ना, और अगर आप उसको ना इकट्ठा करें तो बाद में पत्थर की पत्थर सख्त हो जाती है। बर्फ़ देख लीजिए पिघल के, आइसक्रीम देख लीजिए पिघल के दोबारा सख्त होती है। वो लम्हा हमारी ज़िंदगी का भी बड़ा ही काबिले कदर लम्हा है, जब हमारा दिल हक को पहचान ले, फौरन जाके उसको पकड़ लें, ग्रैप इट, फिर आपको अल्लाह ताला पकड़ लेगा, फिर आपके सारे काम अल्लाह पकड़ेगा। वल्लाहु खैरुन वबका, क्योंकि वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला है। बका उसको, दवाम उसको, रास्ता बेहतर उसका, तो फिर हम क्यों उसके पास ना आए? और आप देख रहे हैं पहले दिन जादूगरों को सारी बात समझ आती है। अब आपके दिल में क्वेश्चन आने चाहिए कि देखा तो जादू का मौजज़ा है, तो ये इनको ये सब कुछ कैसे पता है कि अल्लाह भी है, रब भी है, और आगे क़यामत की बात करेंगे। तो याद रखिए कि मूसा तबलीग कर चुके थे पहले। यहाँ तो ऐसे लग रहा है ना बस एक दिन में मूसा मदियन से आए, अगले दिन फिरौन के पास पहुँचे, तीसरे दिन जादू का मुकाबला हुआ। 40 साल है इन सारों के बीच में। तो मूसा बेचारे अपनी कोशिशों के साथ ऐसा ऐसा मैसेज दे रहे थे लोगों को, पहुँचा हुआ था इन तक, लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। लेकिन आज जब वक्त आया तो सारी हकीकतें खुल गईं। इन्नहु मैयाति रब्बहु मुजरिमन, बेशक जो कोई आएगा अपने रब के पास मुजरिम की हैसियत से। देखे जरा अदालत का मंजर, कोर्ट का कटहरा, हथकड़ियां लगी हुई, नजरें झुकी हुई, शेव बड़ी हुई, चेहरे पर शर्मिंदगी, कैमरामैन को देखकर मुंह छुपाता हुआ शख्स मुजरिम। फ़इन्ना लहु जहन्नम, उसके लिए तो फिर जहन्नम है, क्या होगा वहां? ला यमूतु फीहा वला यहया, ना मरेगा और ना जिएगा। मरेगा क्यों नहीं? मरने नहीं कोई देगा। और जिएगा क्यों नहीं? क्योंकि उसको जिंदगी नहीं कहेंगे, उससे तो मौत बुरी। एक जान में कई बार मारा जाएगा और कई बार जिंदा किया जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि जिंदगी मौत से अबतर हो गई। वजह क्या है? मुजरिम, जुर्म, क्रिमिनल्स। और इसके बरक्स हमें यह आती ही मोमिनन कदम इला सालिहात, और जो कोई इसके पास मोमिन की हैसियत से और इस हालत में कि कद अमिल सालेहात, कि उसने नेक अमल भी किया, शर्त है। देखिए सिर्फ मोमिन नहीं, ये रजिस्टर खुला है, अकाउंट लिखा है, बना है आपका अकाउंट बना है अल्लाह के पास, उसमें क्रेडिट डाली है अमिल सालेहात का। फौलाइक लहुम दरजात लुला, तो इनके दर्जे बहुत बुलंद होंगे। दरजातुन से दरजात मुअन्नस है, इसलिए फिर औला मुअन्नस कहा गया, फिर उनके बुलंद दर्जे होंगे। जन्नात वतनिन तजरी मिन तहतिहा लन्हारु खालिदीन फीहा, रहने के ऐसे बागात जिनके दामन में नहरें बहती होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, यही है बदला उसका जिसने अपने आप को पाक किया। جنت کی بات تو بہت جگہ آتی ہے، یہاں اس کے ساتھ تزکیہ کی بات کیوں آئی؟ جادوگروں کی طرف اشارہ ہے، تزکیہ کیا. اب اگر ایمان بھی لے آتے اور جادو بھی نہ چھوڑتے، ایمان بھی لے آتے اور شرک بھی نہ چھوڑتے، اور ایمان بھی لے آتے اور دولت کو پوچھتے رہتے، تو پھر تزکیہ نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا ایمان بندے کو پاک کر دیتا ہے. پھر اندر سے وہ سب چیزیں کھرچ کھرچ کے نکلتی ہیں، اور انسان اللہ کے ہاں پھر ایسے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھے تو اس کو پیار آ جائے. تو یہ دو مختلف انجام ہیں. ہم سب اللہ سے اپنے لیے دعا کریں، سب کو بھول جائیں، اپنی فکر کر لیں کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیے جائیں، اور تزکیے کے بغیر جنت میں نہ چلے جائیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اصلی جہنمی تو جہنم میں ہی رہیں گے، نہ انہیں وہاں موت آئے گی نہ آرام کی زندگی ملے گی. ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے، جان نکل جائے گی. پھر شفاعت کی اجازت کے بعد ان کا چورا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، تو جس طرح تم نے نہر کے کنارے کے کھیت کے دانوں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح وہ اگیں گے. یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے مثال تو ایسی دی ہے گویا آپ کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں. یعنی آپ کی مثالیں، آپ کے انالوجیز جو تھی وہ اتنی زیادہ عقل اور فہم کے قریب ہوتی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ اس حالات سے گزر چکے ہیں، اور اس طرح پھر وہ لوگ دوبارہ جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور یہ تو جنت کے درجوں کی بات ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور 100 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین و آسمان میں، اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں. اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کرو. یہ ترمذی کی روایت ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے پھر 100 درجے ہیں. درجوں میں اتنی دوری ہے جتنی زمین و آسمان میں. ان میں یاقوت اور موتی ہیں اور زیور بھی. ہر جنت میں امیر ہے جس کی فضیلت اور سرداری کے دوسرے قائل ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ اعلیٰ علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. لوگوں نے کہا پھر یہ بلند درجے تو نبیوں ہی کے لیے خاص ہوں گے. یعنی عموماً ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے. فرمایا سنو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور نبیوں کو سچ مانا. یعنی وہ نہیں ہے، باقی ہیں. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے تمہیں پتہ ہے کہ عجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. کہا نہیں تم بتاؤ. کہا اچھا پھر نبیوں کا ہوگا. کہا نبیوں کا ایمان کیوں نہ ہو، ان کے پاس تو فرشتہ آتا ہے. پھر صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا پھر یہ ہمارا ہوگا. کہا تمہارا کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے تو دن رات وہی آتی ہے اور تم مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. کہا اللہ کے نبی پھر آپ ہی بتا دیں. فرمایا یہ ان کا ایمان ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جن کے پاس وہی نہیں آتی، لیکن وہ صرف میرا تذکرہ سن کر ایمان لائیں گے. تو بات تو بس یہ ہے کہ اللہ نے کھول کے رکھ دیے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس درجے پہ رکھتے ہیں. تو یہ تھا سبق جس کے اندر سے ہم سب کو اپنے لیے دیکھنے کے بہت سارے نقطے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے. اور یہ جو لفظ ہے نا تزکیہ، اس کو بھی لکھ لیں، یہ ڈیول ہوتا ہے، دو رخ عمل ہے، اچھی باتوں کو پیدا کرنا اور برائیوں کو نکالنا. یہ ایسی ہے کہ جیسے گھر صاف بھی کر رہے ہیں نا تو گندی چیزیں بھی نکالتے جائیں. آپ جتنا مرضی دیواریں صاف کر لیں، کرسیاں میں صاف کر لیں، لیکن گندی چیزیں وہیں پڑی رہیں تو آپ کا گھر صاف نہیں لگے گا. لوگوں کو نیکیاں کرنی اچھی لگتی ہیں لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا تزکیہ کر دے. ہاں مشکل تو بہت ہے، تزکیہ کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. نرم ہاتھوں سے تزکیہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب برتن گندا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو اسٹیل وول سے صاف کرتے ہیں، لیکن جب زخم صاف کرتا ہے ڈاکٹر تو وہ روئی کے پھاہوں سے صاف کرتا ہے. ہر انسان کے تزکیے کے لیول فرق ہوتے ہیں. کبھی اپنی تلخ زبان کے ساتھ لوگوں کا تزکیہ نہ کریں. اس طرح کریں کہ ان کا دل بھی نہ دکھے اور ان کے دل سے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی رغبت بھی پیدا ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فتوب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔